आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही दिल्ली में आज से अनलॉक की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि दिल्ली में किन चीज़ों को कितनी छूट मिली है और क्या चीज़ें रहेंगी बंद। कोरोना की तीसरी लहर के आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त है। यह बात कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने आईसीएमआर की एक स्टडी के हवाले से कही है। इसके अलावा आज के पॉडकास्ट में बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन्स के जरिए हुए हमले की जांच के क्या नतीजे अब तक सामने आए हैं। स्कूल खोलने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की रणनीतियों की भी चर्चा करेंगे आज के पॉडकास्ट में। साथ ही यह भी बताएंगे कि स्कूलों को खोलने को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। फिलहाल चलिए चलें पहली खबर की ओर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होता जा रहा है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि यह तीसरी लहर का कारण हो सकती है। इसी बीच एक राहत भरी खबर यह है कि कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि तीसरी लहर आने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त है। उन्होंने जुलाई या अगस्त से बच्चों को वैक्सीन लगाने की उम्मीद भी जताई है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि आईसीएमआर ने एक स्टडी की है, उसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर देर से आएगी। हमारे पास 6 से 8 महीने का समय है। सबको टीका लगाने के लिए हमारे पास इतना वक्त है। आने वाले वक्त में हम हर दिन 1 करोड़ टीके लगाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए, यानी कोरोना वायरस की दूसरी वेव अब मंद पड़ती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से अनलॉक के 5वें चरण में 50% क्षमता के साथ जिम और योग गतिविधियां शुरू करने की छूट दे दी हैं। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाज़त है, लेकिन अंतिम संस्कार में अब भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अनलॉक के 4थे चरण में सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। फिलहाल दिल्ली में एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति है, जबकि रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की छूट है। सभी बाज़ारों और मॉल में दुकानें खोलने का समय भी सुबह 10 से रात 8 तक ही है। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रह रहे हैं। बार भी 50% क्षमता के साथ शुरू हो चुके हैं। हालांकि बार खोलने का समय दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक है। मेट्रो अभी भी 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। दिल्ली में स्पा, सिनेमा हॉल, थिएटर और एंटरटेनमेंट पार्क पर अभी पाबंदियाँ जारी रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान दिल्ली में बंद रहेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम पूरी तरह बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन्स के जरिए किए गए हमले में 2 किलो IED का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस हमले में 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और हाई ग्रेड विस्फोटक गिराए गए। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बेस पर संतरी ने 2 अलग अलग आवाज़ें सुनी और उसके 6 मिनट के अंतर पर 2 विस्फोट हुए। घटनास्थल पर ड्रोन का कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि उन्होंने विस्फोटक गिरा दिया और वापस चले गए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बम डेटा सेंटर की एक एक टीम ने वायुसेना अड्डे पर जांच की। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार विस्फोटक कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। IED को इंपैक्ट चार्ज से लैस किया गया था, जिसमें विस्फोट या तो तुरंत या कुछ देर बाद होता है। अधिकारी ने कहा हर ड्रोन पर विस्फोटक 2 किलो से अधिक था। विस्फोटक हाई ग्रेड के थे और ये RDX भी हो सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी ने कहा आशंका है कि ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स पहले भी जम्मू में हथियार गिरा चुके हैं। सीमा से बेस की दूरी 14 किलोमीटर है। हालांकि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ड्रोन्स किसी स्थानीय जगह से न उड़े हों। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या उनके घर पर कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकी पुलवामा के हरिपरी ग्राम स्थित पूर्व SPO फयाज अहमद के घर पहुंच गए और वहां अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इस हमले में पूर्व अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं SPO की बेटी बुरी तरह से घायल बताई जा रही हैं। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि ये वारदात जम्मू में उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे के वायुसेना के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में ड्रोन से विस्फोटक गिराने की घटना के बाद सामने आई है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में तड़के 3 बजे कारोबारी रियाज कपड़े वाले के घर में घुसे डकैतों ने परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। इस वारदात में 70 वर्षीय पिता रईसुद्दीन, उनके बेटे अजहर और इमरान की मौके पर मौत हो गई, जबकि 65 साल की पत्नी फातिमा की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचे पुलिस के मुताबिक डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार को गोली मारी है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि फातिमा नाम की महिला की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचे SSP अमित पाठक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लोनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने 3 लोगों को मृत पाया, जबकि एक महिला घायल थी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। लोकसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता साक्षी महाराज के खाते से पटना के जालसाजों ने 1,00,000 रुपये उड़ा लिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 जालसाजों को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से कंकड़बाग से निहाल सिन्हा और गर्दनीबाग इलाके से दिनेश राय को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इन्हें पटना से लेकर दिल्ली जा चुकी है। पूछताछ के क्रम में शातिरों ने कई लोगों को चूना लगाने की बात स्वीकार की है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पटना पुलिस दबी जुबान से इस मामले में कुछ भी बता रही है। पटना पुलिस के अधिकारियों के अनुसार दिनेश राय इस गिरोह का मास्टरमाइंड रहा है, जबकि निहाल सिंह उसका सहयोगी। महीने भर पहले जालसाजों ने फर्जी चेक के माध्यम से सांसद साक्षी महाराज के खाते से 1,00,000 रुपये निकाल लिए थे। मिली जानकारी के अनुसार निहाल सिन्हा के खाते में सांसद के पैसे स्थानांतरित किए गए थे। सांसद साक्षी महाराज ने इस मामले को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन में ही इस बात का पता लगा लिया था कि ठगी के इस मामले में पटना के जालसाज शामिल हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं कि जल्द ही सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में स्कूल खोल सकते हैं। स्कूल खोलने की तैयारियों के साथ ही बच्चों की सुरक्षा की प्लानिंग भी की जा रही है। स्कूल खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन समितियों के भी सुझाव मांगे गए हैं। तीसरी लहर के अलर्ट के बीच बच्चों की सुरक्षा के साथ स्कूल खोलने का खाका तैयार हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग विशेषज्ञों से स्कूल खोलने को लेकर सुझाव ले रहा है। सरकार जिला, विकास खंड और ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समितियों से सलाह ले रही है। इसके अलावा शिशु रोग और बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। पहली से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बुलाने को लेकर अलग अलग प्लान तैयार किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीकों का होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इससे स्कूल खोलने में किसी तरह की आशंका भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का 2रे और 3रे चरण का परीक्षण किया गया है। परीक्षण के आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि औषधि नियामक की मंजूरी मिलने के बाद भारत में सितंबर के आसपास बच्चों के लिए टीके उपलब्ध हो सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उससे पहले अगर फाइजर के टीके को मंजूरी मिल गई तो यह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों में COVID-19 संक्रमण के हल्के लक्षण होते हैं और कुछ में लक्षण नहीं भी होते हैं। लेकिन वे संक्रमण के वाहक हो सकते हैं। बीते 1.5 साल में कोविड 19 महामारी के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान की चर्चा करते हुए एम्स प्रमुख ने कहा, स्कूलों को फिर से खोलना होगा और टीकाकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।